हम लोग हरे कृष्ण हम लोग कृष्ण भावना मृत एक अनुपम उपहार तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं ना। यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है और उसमें प्रभुपाद ने एक बात बताई है कि किस प्रकार हम पूरे संसार से संबंध बना सकते हैं। हाँ, पूरे संसार से संबंध बनाने का तरीका क्या है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे किसी स्त्री या पुरुष का दूसरे परिवार में विवाह होता है तो एक जन से विवाह होता है लेकिन संबंध पूरी फैमिली से संबंध बन जाता है ना। तो इसी प्रकार अगर हम कृष्ण से संबंध बनाएंगे तो कृष्ण के द्वारा पूरे संसार से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। और जिस प्रकार स्त्री का विवाह हुआ दूसरे घर में गई तो उसका संबंध सबसे होता है लेकिन उसकी जो निष्ठा या उसका प्रेम है वो केवल अपने पति के लिए ही होता है ना। उसी प्रकार जो वैष्णव है वो संबंध सभी से बनाता है लेकिन उसका केंद्र बिंदु जो है उन संबंध का केंद्र बिंदु कृष्ण ही रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर केंद्र में कृष्ण रहेंगे तो सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर एक तालाब है, तालाब में अगर अलग अलग जगह पर कंकर फेंकेंगे तो उसके वो रिपल्स बनती है ना, वेव्स बनती हैं, गोला छोटा गोला ऐसे बड़ा होता चला जाता है। नहीं तो अगर हम जगह जगह कंकर फेंकेंगे तो जगह जगह वो गोले बनेंगे और वो क्या करते हैं आपस में टकरा जाते हैं। वो नहीं एक गोला वहाँ से चला, एक गोला यहाँ से चला, बढ़ते बढ़ते आपस में टकरा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार अगर हम कृष्ण से संबंध नहीं है, जैसा कि हम भौतिक संसार में देख रहे हैं कि कृष्ण से संबंध नहीं होने के कारण सब लोग दूसरों के कल्याण की बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो दूसरों के कल्याण की भी बात करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। सब लोगों के बात करने का तरीका अलग 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 है, छोटी सीमित सोच है, अपूर्ण इंद्रियां हैं, दिमाग भी जो है इतना पूर्ण दिमाग नहीं है। उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो हित है उसकी स्कीम दूसरे व्यक्ति की स्कीम से टकरा जाती है तो ना उसकी स्कीम चलती है और ना दूसरे की स्कीम चलती है, ख़त्म हो जाता है, क्योस भगदड़ टाइप मच जाती है ना। और प्रभुपाद ने कहा देखो जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन का काम है कि लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन प्रभुपाद ने कहा आप देखो कि यूनाइटेड नेशन में झंडे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि देश बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान का बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पूरी इंडिया का जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। नहीं अब खालिस्तान भी बन ही जाता, बच गया तो अलग अलग हो रहे हैं, फिर माओवादी अपने राज्य बनाने के चक्कर में है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन के प्रयास अगर वाकई में अच्छे हैं, हाँ, रूस के बहुत सारे टुकड़े हो गए, नहीं उसको आयरन कंट्री कहते थे, आयरन कर्टेन कंट्री। अगर यूनाइटेड नेशन की स्कीम इतनी अच्छी है तो टुकड़े क्यों हो रहे हैं? फिर तो झंडे कम होने चाहिए थे लेकिन झंडे बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है कि हर व्यक्ति अलग अलग अपने हित के ऊपर काम कर रहा है ना, एक जुटता नहीं है। एक उद्देश्य नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर सारे पत्थर इकट्ठे करके एक ही बार तालाब में डालें तो जो उससे जो गोले बनेंगे वापस में टकराएंगे नहीं। तो उन्होंने बोला वो जो केंद्र है वो केंद्र कृष्ण हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखेंगे तो आपस में एक दूसरे से हित जो हमारे हैं स्वार्थ आपस में टकराएंगे नहीं, आपस में कुछ फ्रिक्शन मतलब तनाव पैदा नहीं होगा, है ना, सब आपस में जो है मिलजुल कर रहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि अगर हम कृष्ण को सेंटर में रख के सब लोगों से संबंध बनाएंगे कि ये भी कृष्ण के अंश हैं, हम भी कृष्ण के अंश हैं, है ना, तो क्या सबसे समान व्यवहार करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, सो इसका जो आंसर है कि समान व्यवहार करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। जैसे हम स्त्री के प्रसंग में बात करें, जब स्त्री का विवाह होकर दूसरे घर में गई तो वो पूछेगी, उसके सास के बारे में पूछा किसी ने, क्या ये तुम्हारे संबंधी हैं? हाँ मेरे संबंधी हैं। ससुर के बारे में पूछा तो क्या बोलेगी? हाँ मेरे संबंधी हैं, देवर देवरानी जेठ जेठानी, है ना, सब के बारे में बोलेगी संबंधी हैं, तो मतलब समान दृष्टि हो गई, है ना। लेकिन सबसे समान व्यवहार नहीं करेगी, सबसे उनके जैसा आपने बोला सबकी जो स्थिति है उसके अनुसार व्यवहार किया जाएगा। अभी जो सांप है वो भी भगवान कृष्ण का अंश है, हाँ शेर भी भगवान कृष्ण का अंश है, तो हम उनको गले नहीं लगाएंगे, है ना, हम दूर से प्रणाम कर सकते हैं, अच्छा भैया तुम वहाँ ठीक हम यहाँ ठीक, नहीं और अंदर गए तो काम खराब है। सो उसी प्रकार से सब लोग भगवान के अंश हैं, भगवान से संबंधित हैं, ये जानते हुए भी जो वैष्णव है उसको सभी से समान व्यवहार नहीं करता। और रूप गोस्वामी ने बोला भी है कि वैष्णवों के अंदर भी समान व्यवहार नहीं किया जाता, नहीं, वैष्णवों के अंदर भी उन्होंने बताया तीन तरह के वैष्णव हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। तो उन्होंने बताया कनिष्ठ के साथ कैसा व्यवहार करना है, मध्यम के साथ कैसा करना है, उत्तम के साथ कैसा करना है। फिर कनिष्ठ मध्यम के अलावा जो है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम के अलावा हम बात करें कि हमारे अपने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे भक्त से संपर्क होता है, कुछ भक्त हमारे से सीनियर होते हैं, कुछ हमारे बराबर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, तो सबसे समान व्यवहार नहीं किया जाता। समान व्यवहार किया जाता है कि उनके हितों की के बारे में सोचा जाता है, लेकिन हम जो हमारे वरिष्ठ जो वैष्णव है उनसे हम हंसी मजाक नहीं करते, और जो कनिष्ठ है उनसे भी हंसी मजाक नहीं करते, नहीं तो वो सम्मान खत्म हो जाएगा, वो बात ही नहीं सुनेगा अगर हंसी ठट्टा किया जाएगा तो, नहीं। सो जो व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें भी सब लोग का आपस में समान व्यवहार नहीं होता, है ना, अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने बोला है, प्रभुपाद ने भी बोला है कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मायावादियों से बच के रहो, वो भी कृष्ण के अंश हैं, लेकिन उन्होंने बोला बच के रहो भैया, हाँ क्यों? क्योंकि मायावादी भाष्य सुन ले हय शर्मनाश, कि मायावादियों का अगर आपने उनकी कमेंट्री सुन ली, जैसे जाकर नाइक है, हाँ जाकर नाइक की अगर आप बात सुन लो तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है और बड़ी अजीब सी बातें बोलता है कि जो जो सरल मन का व्यक्ति है वो सोचेगा यार बात तो सही कह रही है, हाँ, और वो कोटेशन देगा एक के बाद एक, आप शास्त्रों से वेदों से और भगवद्गीता इत्यादि से कोटेशन देगा, देखो उसके बाद पूरी टीम है जो उसने काम पे लगा रखा है, ऐसे श्लोक निकालो जिससे हिंदुओं का जो तथागतित हिंदू हैं उनका जो है हम उन पे घात कर सकें, उन पे हम चोट कर सकें। वही ढूंढते हैं, वो एक कोट करता है, उसके आगे क्या है पीछे क्या है वो उससे कुछ उसको लेना देना नहीं है, है ना। सो सब कृष्ण के अंश है समझकर भी हमें सबसे एक समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जो सिद्धांत की जो मूल सिद्धांत की जो बात थी कि हम ऐसा नहीं है कि सारे ही जो हैं कृष्ण के अंश हैं तो अपनी संपत्ति लुटा दो, सब अपने हृदय की बात सबको बताते रहो तो मजाक बन जाएगा, वो लोग बोलेंगे क्या है हर एक से हर बात कर लेता है, नहीं। तो विवेक का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर किससे कैसा व्यवहार करना है वो निर्धारित करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, हमारे परिवार के लोग भी कृष्ण के अंश हैं, हमारे आसपास के सारे जो मित्र हैं वो सब भी कृष्ण के अंश हैं, तो क्या हमें उनको उतना ही प्रेम करते रहना चाहिए या हमें उनसे बोलचाल कम कर देनी चाहिए, भक्त नहीं है अभक्त हैं, नहीं तो क्या करना चाहिए। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि आप संबंध बना के रखो कृष्ण को केंद्र में रखे, ये सब भी कृष्ण की वस्तु हैं, तो ऐसा सोच के संबंध बना के रखो लेकिन अनासक्त विषयान, है ना, अनासक्त होकर, आसक्ति से रहित होकर। वैष्णव में आसक्ति रखी जा सकती है लेकिन जो अभक्त हैं उनसे अनासक्त विषयान, अनासक्त रहते हुए बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी मोह के, जो दूसरे लोग हैं उनसे हम अपना संबंध बनाए रख सकते हैं। और जैसे वो मगरमच्छ है ना और बंदर की कहानी, और बंदर कहता है मैं जो मेरा हार्ट है वो तो मैं उधर पेड़ पे छोड़ आया हूँ, तो चलो तुम्हें जाके निकाल के दे देता हूँ, खा लेना, उसमें क्या है, मैं तो हार्ट के बिना जी लेता हूँ। तो अपना हार्ट जो है वो सुरक्षित स्थान पे भक्तों के बीच में सुरक्षित रख के फिर भक्तों से जो और भौतिक लोग हैं उनसे अपना संपर्क बनाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण भी दे रखे हैं कि अभक्तों के साथ अगर हम ज़्यादा संपर्क रखेंगे तो क्या होगा। जैसे महाभारत में उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति भीम के पास आया, तो युधिष्ठिर महाराज ने ड्यूटी लगाई हुई थी भीम की कि कोई भी किसी की भी प्रॉब्लम हो पहले भीम के पास जाए, तो भीम को अच्छा लगता था तुम ऐसा करो वैसा करो न्याय करने के लिए। तो एक व्यक्ति गया, उसने बोला कि देखो एक बड़ा अजीब सी बात हो रही है कि मेरे पास एक मटका है पूरा पानी से भरा हुआ है और मेरे पास छोटी छोटी मटकियाँ भी हैं, तो मैं उस मटके से वो मटकियों में पानी डालता हूँ, ठीक है, और वापस वो मटकियों का पानी मैं वापस मटके में डालता हूँ लेकिन वो आधा खाली हो जाता है मटका। आप समझे प्रश्न कि मटका है सपोज 10 लीटर का मटका है, हाँ, उसमें से छोटी छोटी मटकियों में पानी डाला, गिराया नहीं नीचे, एक बूंद भी नहीं गिराई, और फिर वो पानी डाला, 2 मिनट बाद वो सारा पानी निकाल के वापस मटकी में डाल दिया, तो 10 लीटर होना चाहिए लेकिन वो कह रहे हो 10 लीटर नहीं 6 लीटर निकलता है, तो ऐसा कैसे है। तो भीम ने कहा भी समझ नहीं आ रही बात क्या कैसे, आप लोगों को पता है इसका उत्तर क्या उत्तर है। ओह नो प्रभु, पक्का मटका कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, 4 लीटर कैसे एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ ओह नो, 10 मिनट में क्या इवेपोरेशन हो गया? ऐसा क्वेश्चन प्रभु महाभारत में लिखा हुआ है, इवेपोरेशन वाला आंसर थोड़े ना होगा, इवेपोरेशन वाला आंसर महाभारत में थोड़े ना बोलेंगे, कुछ और बताओ। हाँ हाँ, तो उससे कैसे कम होगा? वो डिवाइड किया, वापस डाल दिया, बराबर हो गया वो। ओह माय गॉड, प्यास लगी पी गया। हाँ टीटू प्रभु कहाँ से आंसर लेके आए हो? हाँ इसका बड़ा गंभीर आंसर है, आप मतलब
हाँ
हरे कृष्णा। जैसे प्रभु एक भक्त है लेकिन वो सीनियर लेवल पर नहीं है, मतलब जिसे वरिष्ठ भक्त बोलते हैं हम या वैष्णव, तो वो पूरी नॉलेज नहीं है उसे शास्त्रों का, जैसे किसी को तर्क दे सकता है शास्त्र, तर्क के हिसाब से जीत सकता है, इसलिए जब वो छोटे लोगों के साथ संगति करता है तो कभी कभी उनकी बातों में आ सकता है, तो उसकी नॉलेज भी जो है पूरी नहीं हो सकती उसे।
हाँ अच्छा, हाँ तो क्यों नहीं भर पा रहे? ये तो मेरा प्रश्न तुमने दोहरा दिया, तो उसका कारण क्या है उसका? ये प्रभु ये ऐसा क्वेश्चन है कि भीम भी इसका उत्तर नहीं दे पाए। अगर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो सारी आत्माओं को मिला के परमात्मा तो कोई बनाने की बात भी नहीं कर रहा, वो कहाँ से आ गई बात? सो खैर आप कितनी भी अटकलें लगा लो इसका उत्तर, जब तक आपको इसका उत्तर पता नहीं होगा आप इसका उत्तर सोच ही नहीं सकते एक्चुअली। सो भीम को, भीम ने कहा भी मुझे इसका उत्तर नहीं पता, तो उसने कहा चलो युधिष्ठिर महाराज के पास चलते हैं। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रश्न रखा कि भाई एक मटके में से छोटे छोटे मटकों में डाला फिर वापस उसमें पलटा तो आधा पानी कम हो गया, तो मतलब इसका क्या रीज़न है, क्या मतलब संकेत मिल रहा है इससे? तो उन्होंने बोला आप जितना भी अपने मित्रों को, परिवार वालों को जितना भी प्यार करो उतना प्यार आपको वापस नहीं मिलता, कम मिलता है। नहीं, जो पेरेंट्स हैं उनको समझे, मुझे तो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट एकदम, कि जितना जो माँ बाप हैं बच्चों से या हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, उनको जितना प्यार वो करते हैं वो उतनी मात्रा में उनको वो जो है रेसिप्रोकेट कहते हैं ना, वापस उनको आदान का जो है वो प्रतिदान उनको नहीं मिलता। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये भौतिक जगत का ये नियम बता रहा है कि आप जितना भी कर लो दूसरों के लिए आपको कभी भी उतना नहीं मिलेगा, कमी रहेगी। सो जब हम संबंध बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर कृष्ण इतर, कृष्ण के अतिरिक्त हम जो भी संबंध बनाते हैं, हम जितना भी दूसरों के लिए करें हमें वापस उतनी मात्रा में नहीं मिलता है। तो क्यों ना हम कृष्ण से संबंध बनाएं जिनसे कम उतनी मात्रा में तो मिलेगा ही। भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथाय भजामि, हम कम से कम 100% रिटर्न तो मिलेगी नहीं, लेकिन भगवान अगर कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो भगवान उसको इतनी सुविधाएं देते हैं कि करोड़ों योजन की दूरी जो है एक पग में नाप ले, वो इतना भगवान सक्षम बना देते हैं। सो जो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि इस जो चैप्टर के ऊपर बात करें, और इससे आप लोगों को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार हम एक विषय पर बात करके अलग अलग जगह से उदाहरण लाकर हम उसी विषय पर स्थिर रहते हुए, है ना, हम बात, अभी हमें 20 मिनट हो चुके हैं इसी टॉपिक पर बात करते हुए, मुझे तो टाइम का पता नहीं चला कि इतना टाइम निकल गया करके, है ना। सो इस तरह से अगर आप अपने लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जिनको आप प्रचार कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। सो